नमस्कार भारत, तारीख 25 सितंबर, दिन बुधवार, मैं हूं मोहनलाल शर्मा। प्रधानमंत्री मोदी की हुई ट्रंप से मुलाकात, ट्रंप ने कहा मोदी है फादर ऑफ इंडिया। ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया शुरू।
I'm announcing the House of Representatives moving forward with an official impeachment inquiry.
RBI ने PMC बैंक पर लगाए कड़े प्रतिबंध, खाता धारक निकाल पाएंगे सिर्फ 1,000 रुपए।
हर किसी के पैरों की जमीन खिसक जाएगी अगर उनका मेहनत का पैसा कोई अचानक से बोलता है कि पापा आपका इतना लाखों का पैसा 6 महीने के लिए होल्ड किया है।
झारखंड के खूंटी जिले में मॉब लिंचिंग के बाद तनाव, लेकिन पहले BBC समाचार।
BBC समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को एक बार फिर मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मोदी चरमपंथ से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं और बहुत अच्छा होगा अगर नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान मिलकर कश्मीर मसले का कोई हल निकालें। इस दौरान ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें फादर ऑफ इंडिया बताया। अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ औपचारिक तौर पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैंसी पेलोसी ने इस बात की जानकारी दी। पेलोसी ने ट्रंप पर संविधान का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। इस कार्यवाही का केंद्र ट्रंप पर लगे वो आरोप होंगे जिनमें कहा गया है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति पर अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच शुरू करने का दबाव बनाया। हालांकि ट्रंप ने महाभियोग की प्रक्रिया को बकवास बताकर खारिज किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में वैश्विकता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को आज़ादी और शांति चाहिए तो उन्हें अपने देश से प्यार करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि भविष्य में देशभक्त और स्वायत्त देशों का ही बोलबाला होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हिंसक और बेवजह आक्रामक रवैया दिखाने का आरोप लगाया। अपने भाषण में उन्होंने चीन के व्यापारिक मॉडल की भी निंदा की।
In response to Iran's recent attack on Saudi Arabian oil facilities, we just imposed the highest level of sanctions.
सऊदी अरब के तेल संयंत्रों पर ईरान के हमले के जवाब में हमने ईरान के केंद्रीय बैंक और स्वायत्त धन निधि पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। सभी देशों का कर्तव्य है कि वो कार्रवाई करें। किसी भी जिम्मेदार सरकार को ईरान को रक्तपात के लिए आर्थिक मदद नहीं देनी चाहिए। ये थे अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्जिट से 5 हफ्ते पहले संसद निलंबित करने के अपने फैसले का बचाव किया है। मंगलवार को ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने ये गैर कानूनी तरीके से किया। जॉनसन ने कहा कि वो कोर्ट के फैसले से पूरी तरह से असहमत हैं, लेकिन वो फिर भी इस फैसले का सम्मान करते हैं। जॉनसन ने कहा कि लोग चाहते थे कि वो सुनिश्चित करें कि ब्रिटेन अगले महीने के अंत तक यूरोपीय संघ से अलग हो जाए।
As the law currently stands, the UK leaves the EU on October the 31st, come what may. But the interesting
कानून के अनुसार ब्रिटेन यूरोपीय संघ को 31 अक्टूबर को छोड़ने के लिए बाध्य है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि हम एक अच्छा समझौता चाहते हैं और इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। और मैं ईमानदारी से कह सकता हूं कि संसद और कोर्ट में इस तरह की चीज़ों से ऐसा करना आसान नहीं हो जाएगा। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने कहा है कि अमेज़न के वर्षा वनों को मानव जाति की सांझी विरासत और दुनिया के फेफड़े बताना गलत है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि अमेज़न ब्राजील के संप्रभु क्षेत्र का हिस्सा है। बोल्सोनारो ने आरोप लगाया कि विदेशी मीडिया वनों की कटाई को लेकर झूठ फैला रही है। उन्होंने शिकायत की कि कुछ देशों ने उपनिवेशवादी तरीके से व्यवहार किया। अमेज़न में इस साल लगी आग की वजह से बहुत से पेड़ जलकर खाक हो गए हैं। इस कारण ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। भूकंप की चपेट में आए पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में राहत और बचाव का काम जारी है। BBC समाचार।
BBC हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच कल एक बार फिर से मुलाकात हुई। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ की और उन्हें फादर ऑफ इंडिया बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिता की तरह भारत को जोड़ा है। ट्रंप ने कहा कि चरमपंथ के मामले पर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को साफ शब्दों में संदेश दे चुके हैं और ये दोनों जब मिलेंगे तो कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा। मोदी और ट्रंप की मुलाकात पर सुनिए न्यूयॉर्क से सलीम रिजवी की रिपोर्ट।
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में मुलाकात से पहले पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने कहा कि चरमपंथ के मामले में नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को साफ शब्दों में संदेश दे चुके हैं और उन्हें यकीन है कि वो इससे जुड़ी स्थिति को संभालने में सक्षम है। ट्रंप ने कहा कि उनका मानना है कि ये दोनों सज्जन यानी इमरान और मोदी मिलेंगे और कुछ ना कुछ हल निकालेंगे। मोदी से मुलाकात के एक दिन पहले ट्रंप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान से भी मिले थे। तब उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने ह्यूस्टन में हुए हाउडी मोदी कार्यक्रम में बहुत ही आक्रामक बयान दिया था। वैसे लग रहा था कि दोनों देशों के नेताओं के बीच ह्यूस्टन के हाउडी मोदी का मूड अभी भी बरकरार है। ट्रंप ने मोदी की जमकर तारीफ की। ट्रंप ने मोदी को फादर ऑफ इंडिया कह डाला। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने पिता की तरह भारत को जोड़ा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि नरेंद्र मोदी के लिए उनके दिल में बहुत सम्मान है और वो उन्हें बहुत पसंद करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत के साथ जल्द ही एक व्यापार समझौता हो सकता है और उसके लिए बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने अमरीका और भारत के मजबूत रिश्ते के बारे में कहा,
जहाँ तक ट्रेड का सवाल है, मुझे खुशी है कि मैं जब परसों ह्यूस्टन में था तो हमारे पेट्रोनेट ने वहाँ पर $2.5 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट का एमओयू किया है। राष्ट्रपति ट्रंप मेरे तो मित्र है ही है, लेकिन भारत के बहुत एक अच्छे मित्र के रूप में आज भारत और अमेरिका बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।
मोदी और ट्रंप की बैठक के बाद भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने प्रेस वार्ता में कहा कि भारत पाकिस्तान से बातचीत करने से बच नहीं रहा है। भारत पाकिस्तान से बात करेगा बशर्ते वो आतंकवाद के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए, और अभी तक पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया है।
जहां तक ठोस कदम की बात आती है, हमने पाकिस्तान के साइड को बताया है कि हम क्या क्या कदम चाहते हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। अब उनके तरफ उनको करना है या ना करना है वो उनके हाथ में है।
उधर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने विश्व समुदाय को कश्मीर में जारी हालात से आगाह करने के मकसद से संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
यू कुड डू व्हाटएवर यू लाइक विद द पीपल प्रोवाइडेड यू कुड टर्म देम एज इस्लामिक टेररिस्ट एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट नरेंद्र मोदी इज डूइंग नियर जेनोसाइड व्हिच ही इज अबाउट टू कमिट ही इज ब्लेमिंग इट ऑन इस्लामिक टेररिज्म।
इमरान खान कह रहे थे कि अगर आप इस्लामी दहशतगर्दी का नाम दे दें तो किसी इंसान के साथ जो चाहे सलूक करें, और यही नरेंद्र मोदी कश्मीरियों के साथ कर रहे हैं, और इसीलिए वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को कश्मीरियों के हालात के बारे में बताना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। ये थे इमरान खान के शब्द। वहीं आज न्यूयॉर्क में ही प्रधानमंत्री मोदी को गेट्स फाउंडेशन की ओर से स्वच्छ भारत अभियान के लिए ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित भी किया गया। अब 27 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करेंगे। सलीम रिजवी, न्यूयॉर्क।
प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की मुलाकात। अमेरिका की प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की है और डेमोक्रेट सांसदों ने औपचारिक तौर पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी। सवाल यह है कि क्यों ट्रंप पर महाभियोग की ये प्रक्रिया शुरू की गई है और ट्रंप का जवाब क्या है। बीबीसी संवाददाताओं का भेजा ब्यौरा सुनिए तन्वी से, शुरुआत नैन्सी पेलोसी की आवाज से।
दिस वीक द प्रेसिडेंट हैज एडमिटेड to asking the president of Ukraine to take actions which would benefit him politically.
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस हफ्ते इस बात को माना है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से अपने राजनीतिक हित के लिए बात की थी। ये उनके राष्ट्रपति पद की गरिमा के खिलाफ है, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रपति चुनावों की निष्पक्षता के खिलाफ है। इसलिए मैं ये महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करते हुए अपनी 6 समितियों को जांच को आगे बढ़ाने का आदेश दे रही हूं। ये थी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी के शब्द। राष्ट्रपति ट्रंप ने इन आरोपों दावों से इनकार किया है जिनमें कहा जा रहा है कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया था कि वे अपने प्रतिद्वंदी जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ भ्रष्टाचार के दावों की जांच शुरू करें। हालांकि ट्रंप ने यह जरूर माना कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से फोन पर चर्चा की थी और वो फोन पर हुई इस बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट कॉपी भी डेमोक्रेट से साझा करने को तैयार थे, पर डेमोक्रेट्स के ऐसा न करने पर ट्रंप ने इसे राष्ट्रपति का उत्पीड़न बताया। ऐसा उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र की सभा में संवाददाताओं से बात करते हुए ट्रंप ने इस महाभियोग की प्रक्रिया को बकवास बताते हुए इसे अपने खिलाफ डेमोक्रेट्स की एक सोची समझी साजिश करार दिया।
It's just a continuation of the witch hunt. It's the worst witch hunt in political history. Our country is doing phenomenally well.
ये बस मेरे खिलाफ विच हंट पॉलिसी की इतिहास में सबसे गंदी मिसाल है। हमारा देश बहुत अच्छा कर रहा है, पर डेमोक्रेट्स ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये भी जानते हैं कि ये चुनाव हार रहे हैं। लोग तो मुझे कह रहे हैं कि ये कार्रवाई मेरे लिए अच्छी ही साबित होगी। लाना ही है तो बंदूक कानून लाओ, दवाइयों के दाम घटाने की बात करो, पर ये ऐसा नहीं करेंगे। ये सिर्फ बकवास की बात करते हैं। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अभी तक अमरीका के किसी भी राष्ट्रपति को महाभियोग के जरिए नहीं हटाया गया है। जो बाइडेन ने भी महाभियोग की कार्रवाई शुरू किए जाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है ट्रंप पर महाभियोग चलाना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये उनकी खुद की वजह से हो रहा है।
It's time for this administration to stop stonewalling and provide the Congress with all the facts it needs, including a copy of the formal complaint made by the whistleblower.
ये ना तो डेमोक्रेटिक मुद्दा है और ना ही रिपब्लिकन, ये एक राष्ट्रीय और सुरक्षा का मुद्दा है। प्रशासन को अब अवरोध करने से खुद को रोकना चाहिए। समय आ गया है कि वो कांग्रेस को सारे तथ्य दें जिसमें विसल ब्लोअर की शिकायत भी शामिल हो, ताकि वो राष्ट्रपति के आचरण की जांच कर सकें। ऐसा करना उनका संवैधानिक अधिकार है। राष्ट्रपति ट्रंप को भी इस जांच में पूरा सहयोग देना चाहिए, और अगर वे ऐसा नहीं करते तो वे कांग्रेस के पास महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ते। महाभियोग की कार्यवाही एक त्रासदी है, पर यह उनकी खुद की बनाई त्रासदी है। ये थे अमरीका के पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेन के शब्द। अमरीका में अगले साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप को जो बाइडेन कड़ी टक्कर दे सकते हैं।
तो जैसा कि आपने सुना, ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है।
नमस्कार भारत, शॉर्ट वेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 6070, 7290 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। कल जो भूकंप पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में आया, उसमें मरने वालों की संख्या बढ़कर 23 हो गई है। करीब 300 अन्य घायल हैं। अमेरिका की जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.8 थी और इसका केंद्र पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के झेलम शहर से करीब 5 किलोमीटर दूर था। भूकंप के असर से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर के अलावा राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और कई शहरों से भी नुकसान होने की खबर मिली है। भूकंप के झटकों से प्रभावित एक पीड़ित ने बताया।
मैं खटियार बैठ रहा ना,
छत गिर गई।
अच्छा, छत गिर गई।
हमारे सारे मकान गिर गए और 10 कमरे से सारे गिर गए। हमारे बच्चे पता नहीं क्या हाल है उनका, अभी कोई पता नहीं है। ये इनको लेके आए विवाद साहब है मेरे। ये
मकान गिरे आपके?
जी, 8-10 कमरे थे, सारे गिर गए हमारे।
और इर्द गिर्द की जो आबादी है
उनका कोई पता नहीं। अभी काफी दबाव पा रहे, कोठी है बड़ी, वो भी दबाव हो गई है।
ये थे एक पीड़ित के शब्द। हमारे सहयोगी एसएम जर्राल ने बात की पुलिस डीआईजी सरदार गुलफास से।
मकानात की अभी तादाद नहीं बताई जा सकती क्योंकि 200 से ज्यादा मकान डैमेज हुए हैं, जो छोटे कच्चे मकान थे। और नहर अपर जेलम के साथ हमारी जो मंगला से जातना की तरफ जाने वाली रोड थी वो मुतासर हो गई, वो सारी की सारी मुख्तलिफ जगह से नहर में चली गई। नहर को बंद कर दिया गया है, तो अभी जो टीमें रेस्क्यू आर्मी की और बाकी जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो सारी मौजूद है वहाँ।
कितने एरिया को आपने इस वक्त तक रेस्क्यू कर लिया, टीमें आपको या पहुंच चुकी हैं, कौन कौन लोग इसमें हिस्सा ले रहे हैं सारे?
इसमें देखें पुलिस के लोग हैं, पाकिस्तान आर्मी के लोग हैं, बल्कि जीओसी 19 डिव जो है वो मुख्तलिफ ब्रिगेड कमांडर हैं वो आए हुए हैं, बाकी लोग आए हुए हैं। और पांच का जल्जला था, वैसा नहीं है कि बिल्डिंगों के नीचे लोग आए हुए हैं, वो उस तरह की सूरत हाल नहीं है। ये सूरत हाल थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये कच्चे मकान थे वो गिरे हैं, दीवारें गिरी हैं।
ये थे पुलिस डीआईजी सरदार गुलफाज और उनसे बात कर रहे थे पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद में हमारे सहयोगी एसएम जर्राल। वहां पर इस समय ताजा सूरत हाल क्या है और जानकारी के लिए अब से चंद मिनट पहले मैंने बात की एसएम जर्राल से।
जो ये अर्थक्वेक आया है मीरपुर के डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ जो हमारे डीआईजी हैं सरदार गुलफराज, उनका ये कहना है कि अभी तक जो है इस अर्थक्वेक की वजह से सबसे ज्यादा जो एरिया मुतासर हुए हैं मीरपुर के अंदर जो जातला और जड़ीकस और अफजलपुर के ये इलाके हैं इसमें सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। यहाँ पर जो है वो अभी तक जो उनकी इत्तला के मुताबिक 23 जो आम लोग हैं उनकी यानी मौत वाकया हुई है और तकरीबन जो है वो 300 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और जो घायल होने वाले हैं उन्हें वहाँ करीबी जो अस्पताल है मकामी अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में यानी जजली अस्पताल जिन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कहते हैं वहाँ मुंतकिल किया गया है और बाद जो घायल लोग हैं उनको रावलपिंडी और इस्लामाबाद की साइड जो है वो मुंतकिल किया गया है।
जनरल साहब ऐसी हमने तस्वीरें देखी जो वहाँ से आ रही हैं कि सड़कें जो है वो उसमें इतनी बुरी तरह से टूट गई हैं कि पूरी खाइयाँ दिख गई हैं और जो मकान हैं वो पूरे ध्वस्त हो गए हैं गिर गए हैं, आपने भी देखा होगा, और किस तरह से बचाव का काम चल रहा है?
जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है जो जातना में है और तकरीबन वहाँ जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट ने बताया कि तकरीबन लगभग 200 के करीब जो मकान हैं हाउस हैं वो डैमेज हुए हैं। सबसे ज्यादा यही एरिया जो है मुतासर हुआ है और ये फॉल्ट लाइन के बिल्कुल करीब था और जो इस वक्त मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमें हैं जो मुकामी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है या उसके साथ साथ जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके जो एहलकार हैं वो यानी इस तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन क्योंकि रात ये बहुत सी जो कम्युनिकेशन यानी कि जिसमें रोडें और ब्रिज टूटे थे जिसमें उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी आ रहे थे, ये ऑपरेशन जो है वो आज भी जारी रहेगा, लेकिन मोस्टली जो जख्मी लोग हैं तकरीबन यही बताया जा रहा है कि उनको मुख्तलिफ हॉस्पिटल में जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है।
ये थे पत्रकार एसएम जर्राल जो कि बता रहे थे कि किस तरह से पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक यानी कि पीएमसी पर कड़े प्रतिबंध लगाए हैं। रिजर्व बैंक के निर्देश के मुताबिक अब इस बैंक के खाताधारक अपने अकाउंट से सिर्फ 1,000 रुपए ही निकाल पाएंगे। इस आदेश के बाद बैंक के खाताधारी और वहां रकम जमा करने वाले लोग परेशान हैं, विरोध जता रहे हैं। इस बीच एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने एक बयान में कहा है कि उनकी जिम्मेदारी थी व्यवस्थाओं दुरुस्त करना, लेकिन उन्होंने इसे अब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का भरोसा दिया है। रिजर्व बैंक के आदेश को लेकर बैंक में खाता रखने वालों के बीच अफरा तफरी की स्थिति है। मुंबई के मलाड में कल बैंक से पैसा निकालने पहुंचे लंबी लंबी कतारों में लगे लोगों से बात की हमारी सहयोगी सुप्रिया सोगले ने।
मैं अभी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मारवे ब्रांच के सामने खड़ी हूँ। मेरे सामने कुछ कस्टमर्स हैं बैंक के जिनका रोजमर्रा की जिंदगी बहुत इफेक्ट हुई है।
आज हमको सुबह में करीब 11-12 बजे खबर मिली कि नहीं ये बैंक बंद हो गया। हमारा कल टिकट है गांव जाने का, अभी हम क्या करें कैसे जाएं, पैसा ही नहीं है।
मैडम हम पानी पूरी बेचते हैं रोड के ऊपर और हमारा 9,500 रुपया है, कल हमको भी गांव जाना है समझे ना। हम लोग दशहरा मेला का रुतवा करने के लिए, लेकिन हम लोग का पैसा नहीं मिल रहा है।
बैंक वालों ने आपसे क्या बोला?
बैंक वाला तो बात ही नहीं कर रहा है, बोलेगा क्या?
1,000 रुपया दे रहा है उससे क्या होने वाला होगा, 1,000 में क्या होने वाला है?
लड़की का शादी भी है हमारे।
तो आरबीआई से आप क्या दरख्वास्त करना चाहते हैं?
हम तो इतना पढ़े लिखे नहीं है मैडम, हम पैसा जमा करते थे निकालते थे, लेकिन अभी क्या करेगा, अब तो उन लोग को मालूम होगा ना।
तो क्या होएगा 6 महीने के बाद 1,000 रुपये तो अभी घर पे जाते ही खर्चा हो जाएगा, फिर 6 महीने तक कोई भूखा रहेगा? हमारा जो कुछ था सब इसमें डाल दिए, घर का खर्चा जो जमा था वो सब इसमें रख दिए। घर में रखने से अच्छा सेफ इसमें रहेगा, तो ये तो और डाका पड़ गया, अभी इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। अभी तो नोटबंदी थी, अभी तो पैसा ही चला गया, अभी मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा ये भी तो हम लोग को नहीं पता है।
15-20-22 हज़ार रुपया है मेरा, तो मैं अपना धंधा रोक के यहाँ आ गया, लाइन में खड़ा हूँ करीब 11 बजे से सर यहाँ।
ये थे पीएमसी बैंक के खाता धारक जो कि अब बहुत परेशान है। झारखंड के खूंटी जिले में मॉब लिंचिंग के बाद सुवारी और जलतंडा गांव के बीच गहरा तनाव है। पुलिस द्वारा एफआईआर में पता चला है कि उस हिंसक भीड़ में शामिल अधिकतर लोग बाहरी थे। ग्रामीणों का कहना है कि मॉब लिंचिंग में शामिल लोगों का संबंध बजरंग दल से था। वहीं बजरंग दल ने इस आरोप से इनकार किया है। इस बीच दोनों घायलों की हालत चिंताजनक बनी हुई है। रवि प्रकाश की रांची से रिपोर्ट।
कर्रा थाने के सुवारी गांव में भीड़ द्वारा मारे गए क्लेमतुस बाडला के शरीर का आधा हिस्सा बेकार था। 5 साल पहले हुई एक दुर्घटना के बाद उनका बायां हाथ और पैर काम नहीं करता था। जिंदगी चलाने के लिए वे शरीर के दाएं हिस्से और अपनी पत्नी करुणा बाडला के सपोर्ट पर निर्भर थे। क्लेमतुस बाडला के घर में अब सिर्फ उनकी पत्नी है। उनकी मौत के बाद अब वे बिल्कुल अकेली हो गई हैं। गोपालपुर गांव में मिट्टी की दीवारों और खपरेल छत वाले उनके घर में कुछ कपड़े हैं और पासपोर्ट साइज से भी छोटी एक रंगीन तस्वीर। इसमें वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिख रहे हैं। उनकी पत्नी करुणा बाडला ने बताया कि उनके इकलौते बेटे की मौत महज 3 साल की उम्र में बुखार के कारण हो गई थी। करुणा बाडला ने बीबीसी से कहा,
शनिवार को यहाँ से गए थे, वो तो रविवार को लौटने वाले थे। पैदल नहीं चल सकते थे, एक पैर में उनका ताकत नहीं था। बायां साइड का पैर हाथ उनका नहीं काम करता, सिर्फ दाहिना साइड का। अब देखिए, गांव के जो बड़े बोलेंगे वही मैं भी चाहती हूँ। अगर गांव के बड़े ही अगर इन ये कांड को अगर दबा देते हैं तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं अकेले नहीं लड़ सकती हूँ।
वे अपनी बहन से मिलने सुवारी गए थे जब उन्हें भीड़ ने मार डाला। अब उनकी बहन की ससुराल में भी मातम है। उनकी सास बार बार रोने लगती है। मॉब लिंचिंग में बुरी तरह घायल फिलिप होरो की पत्नी और उनके बड़े भाई की मौत इसी महीने हुई है। पहले उन्होंने अपना भाई खोया, 15-20 दिन बाद पास की नदी में नहाने गई उनकी पत्नी भी डूबकर मर गईं। वे इस दुख से उबर पाते इससे पहले ही भीड़ ने उन्हें अपना शिकार बना लिया। वे बुरी तरह पीटे गए तब वे सुवारी नदी में नहाने गए थे। उनके छोटे भाई अपना नाम नहीं बताते, लेकिन उन्होंने बीबीसी से कहा कि फिलिप बंगाल में मजदूरी किया करते थे, वे हाल ही में अपने गाँव लौटे थे।
फिलिप का सब तो उसको नहीं जान रहे हम खुरियाते।
इस घटना के बाद सुवारी और जलतंडा गांवों में पहले से कायम तनाव और बढ़ गया है। जलतंडा में रहने वाले अधिकतर लोग हिंदू धर्मावलंबी हैं और सुवारी के आदिवासियों ने बहुत पहले ईसाई धर्म अपना लिया था। जलतंडा के लोगों का आरोप है कि सुवारी वाले कथित तौर पर गाय का मांस काटते, बेचते और खाते हैं। वहीं सुवारी के लोग इससे इनकार करते हैं। इधर पुलिस ने जलतंडा गाँव के कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। इससे गाँव के लोग आक्रोशित हैं। यहाँ की जोगतानंद दास ने कहा कि मॉब लिंचिंग में शामिल लोग बजरंग दल से जुड़े थे।
तो ये बच्चा चोर 2 दिन पहले आया था, तो ये बच्चा लोग सब जितना लड़का लड़की था जितना वो भाग ले गया। उधर बच्चा चोर आया है वही देखने के लिए चल गया वो टोली में। अब देखने गया तो वहाँ गौ हत्या हो रहा है, तो वो लोग पहले आ गया, बजरंग दल के लोग आए थे और लोग मारपीट किया उसको, मारपीट करके और लोग भाग गया। भागने के बाद वो लोग पुलिस वाला आया तो जैसे आप खड़े हैं हम खड़े हैं, आप लोग देखे हैं हमारा नाम लिखा, इसका नाम लिखा, उसका नाम लिखा, लिख के चला गया। और लोग लिख के दर्शा दिया का जलटंडा गांव वाला ग्रामीणों ने तुम्हारी गांव वाला को बहुत मारा।
बजरंग दल के खूंटी जिला संयोजक विशाल साहू इससे इनकार करते हैं। उन्होंने बीबीसी से कहा,
वहां पर बहुत वर्षों से गौ हत्या हो रही थी और उस गांव से 4 किलोमीटर की दूरी पे थाना है, तो प्रशासन उस समय क्या कर रही थी? ग्रामीणों ने बहुत बार प्रशासन को बोला कि वहां पर गौ काटा जा रहा है, गौ तस्करी हो रहा है, तो वहां प्रशासन को तो जाना चाहिए। झारखंड सरकार के द्वारा तो कानूनी मतलब किया गया, गौ तस्करी नहीं होना चाहिए। अच्छा, उस जहाँ पर हुआ घटना वहाँ प्रशासन भी थी, ग्रामीणों ने थी, तो प्रशासन के सामने तो कहीं मॉब लिंचिंग नहीं होता है। अगर प्रशासन के सामने मॉब लिंचिंग होता तो प्रशासन वहाँ पर क्या कर रही थी?
इधर कर्रा थाने में दर्ज पुलिस रिपोर्ट में नामजद 4 में से 3 लोग सुवारी और जलतंडा गांवों के नहीं है। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि इस घटना के शिकार लोगों ने पुलिस को इन कथित हमलावरों के नाम बताए थे। पुलिस ने घटनास्थल से लाठियां, मांस काटने का सामान और मांस के टुकड़े भी जब्त किए हैं। इसकी मॉनिटरिंग कर रहे डीएसपी ऋषभ यार ने बताया कि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है। रवि प्रकाश, बीबीसी के लिए खूंटी के कर्रा में।
ये थी रवि प्रकाश की ग्राउंड रिपोर्ट। और कार्यक्रम में अब अखबारों के पन्ने पलटते हैं। गुरप्रीत, क्या कह रहे हैं आज के अखबार, बड़ी खबरें क्या हैं?
जी, सभी अखबारों में मोदी और ट्रंप की मुलाकात को लेकर पहले पन्ने पर सभी अखबारों में खबर दिख रही है। और द इंडियन एक्सप्रेस में उन्हीं का एक कार्टून है जिसमें ट्रंप और मोदी हैं। ट्रंप के गले में एक मेडल है जिस पर लिखा है पीस और उसके साथ लाइन लिखी है अब की बार नोबल पुरस्कार। इसके अलावा
हालांकि नोबेल पुरस्कार पर ही कल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक चुटकी ली थी।
जी बिल्कुल। और शरद पवार के खिलाफ ईडी ने दर्ज किया मामला, ये खबर इंडियन एक्सप्रेस में है। प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र सहकारी बैंक घोटाला मामले में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार, उनके भतीजे और पूर्व उप मुख्यमंत्री अजीत पवार व अन्य के खिलाफ धन शोधन का एक आपराधिक मामला दर्ज किया है। इसके अलावा चिन्मयानंद मामला, कोर्ट ने छात्रा की याचिका स्वीकार की। शाहजहांपुर की एक स्थानीय अदालत ने बीजेपी नेता चिन्मयानंद पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली छात्रा की अग्रिम जमानत याचिका विचारार्थ स्वीकार कर ली है। ये खबर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में है। और द हिंदू अखबार में ही उन्नाव पीड़ित और उनका परिवार दिल्ली में ही रहेगा, एक कोर्ट ने निर्देश दिया है कि उनके रहने का इंतजाम दिल्ली में किया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक रिपोर्ट सबमिट की है जिसमें ये कहा गया है कि विक्टिम और उनका परिवार राजधानी में ही रहना चाहता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के गाँव में, उनके गाँव में उन्हें जान का खतरा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इन दिनों हनी ट्रैप रैकेट को लेकर खबरें सुर्खियों में हैं, तो उससे जुड़ी एक खबर हिंदुस्तान द हिंदू अखबार में है। राज्य में कई मामले सामने आए हैं जिनमें बड़े अधिकारियों और नेताओं की आपत्तिजनक वीडियो बनाई गई और उन्हें सार्वजनिक करने की धमकी देकर ब्लैकमेलिंग की गई। बीजेपी मामले में सीबीआई जांच की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस का आरोप है कि उनकी सरकार को गिराने के लिए ये साजिश रची गई है।
मैं देख रहा हूँ कि जनसत्ता में एक कार्टून है और ये कार्टून बनाया है इरफान ने, प्याज के दाम 70-80 रुपए किलो तक पहुँचे और बिहार में लाखों की प्याज गोदाम से चोरी हुई। तो गोदाम है, गोदाम पर ताला लगा हुआ है और एक किसान खड़ा है और ये दिखा रहा है और कह रहा है कि ये प्याज का गोदाम है। तो इस तरह की एक बड़ा सुंदर सा कार्टून है।
भीड़ हिंसा में स्वयंसेवक शामिल तो संघ से निकाल देंगे, ये भागवत ने कहा है। संघ प्रमुख ने कहा है कि मंगलवार को कि मॉब लिंचिंग ही नहीं सब तरह की हिंसा के खिलाफ है संघ, अगर कोई स्वयंसेवक लिंचिंग में दोषी पाया जाता है तो उसे निकाल बाहर किया जाएगा।
और ये जो बयान है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का है। बहुत बहुत शुक्रिया गुरप्रीत। और अब कार्यक्रम में वक्त है खेल समाचारों का।
खेल समाचारों के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने कल सूरत में खेले गए पहले 2020 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीकी महिला टीम को 11 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारतीय महिला टीम ने 5 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसी बीच कई स्टार खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी वाली श्रीलंकाई क्रिकेट टीम कल सुरक्षा चिंताओं के बीच पाकिस्तान दौरे पर रवाना हो गई। श्रीलंकाई टीम पर साल 2009 में लाहौर में हमला हुआ था, जिसके बाद अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय टीमों ने पाकिस्तान का दौरा करने से इनकार कर दिया था और इसके बाद पाकिस्तान को अपने ज्यादातर घरेलू मैच संयुक्त अरब अमीरात में खेलने पड़े। पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच इस दौरे पर 3 एकदिवसीय और 3 2020 अंतर्राष्ट्रीय मैच होने हैं। उधर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 3 2020 मैचों की सीरीज 1-1 से बराबरी पर खेलने वाली भारतीय क्रिकेट टीम अब अगले महीने 2 अक्टूबर से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी, लेकिन भारत के तेज गेंदबाजी आक्रमण को तब बड़ा झटका लगा जब जसप्रीत बुमराह चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह चयनकर्ताओं ने उमेश यादव को चुना है। अब सभी टेस्ट सीरीज विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा हैं और जसप्रीत बुमराह ने पिछली सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहद शानदार गेंदबाजी की थी। वहीं अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी और अमेरिका को महिला फुटबॉल विश्व कप का खिताब दिलाने वाली मेगन रैपिनॉय को फीफा की तरफ से साल के सर्वश्रेष्ठ पुरुष और महिला फुटबॉलर से सम्मानित किया गया।
खेल समाचारों के बाद इससे पहले कि आपसे विदा लें, मुख्य समाचार फिर से सुन लेते हैं।
बीबीसी समाचार। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को फिर से मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मोदी चरमपंथ से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं। अमेरिका में डेमोक्रेट्स ने राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ औपचारिक तौर पर महाभियोग की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के अपने भाषण में वैश्विकता की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर लोगों को आज़ादी और शांति चाहिए तो उन्हें अपने देश से प्यार करना होगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने ब्रेक्सिट से 5 हफ्ते पहले संसद निलंबित करने के अपने फैसले का बचाव किया है। मंगलवार को ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने ये गैर कानूनी तरीके से किया है। ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने कहा कि अमेज़न के वर्षावनों को मानव जाति की सांझी विरासत और दुनिया के फेफड़े बताना गलत है। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में उन्होंने कहा कि अमेज़न ब्राज़ील के संप्रभु देश का हिस्सा था। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे राजेश चौहान। शाम को 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक मोहनलाल शर्मा को अपने समस्त सहयोगियों के साथ विदा दें और bbchindi.com का पन्ना आपके साथ है। नमस्कार।
पूरी पढ़ो पहली वाली। बीबीसी समाचार गुरप्रीत सैनी से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मंगलवार को एक बार फिर मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप ने कहा कि मोदी चरमपंथ से निपटने में पूरी तरह सक्षम हैं और बहुत अच्छा होगा अगर